नमस्कार भारत, आज है 6 नवंबर दिन मंगलवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका में कांग्रेस और सीनेट के नए सदस्यों को चुनने के लिए मंगलवार को होगा मतदान। भारतीय मूल के कई उम्मीदवार मैदान में। दीप महोत्सव के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं खास मेहमान, लेकिन क्या आम लोग ले सकेंगे इस आयोजन का आनंद?
अब की बार तो उम्मीद नहीं कि उस कार्यक्रम स्थल तक हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि अब के बाहर के भी गेस्ट हैं, तो प्रशासनिक सुरक्षा घेरा कड़ा रहेगा।
अफगानिस्तान में लापता भारतीय मजदूरों के घरों में दीपावली पर कैसे जलेंगे दीपक?
अपहरण हुआ था 11 बजे, 8 बजे बात हुआ है।
यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग का आदमी चाहिए सही सलामत।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनने के बाद अमरीकी मतदाता आज फिर एक बार मतदान करने वाले हैं। इस बार अमरीका के लोग कांग्रेस के नए सदस्यों का चुनाव करेंगे। नए सदस्यों का ये चुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। अमरीका युद्ध, प्रवासन और पर्यावरण संबंधी नीतियों के लिए कांग्रेस के फैसलों पर निर्भर करता है। इस चुनाव के लिए आखिरी पलों का प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओहियो, मिसौरी और इंडियाना में रैलियां की। भाषणों में उन्होंने आर्थिक विकास की बात की और प्रवासियों पर अपने कड़े रुख को दोहराया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वर्जीनिया में चुनाव प्रचार किया और बताया कि यह चुनाव अहम क्यों है।
Most importantly, the character of this country is on the ballot. Who we are is on the ballot.
सबसे जरूरी बात यह है कि इस देश का चरित्र मतदान पर निर्भर करेगा। ये इस पर निर्भर करेगा कि हम वोट कैसे डालते हैं, किस तरह की राजनीति की उम्मीद रखते हैं और सार्वजनिक जीवन में कैसा बर्ताव करते हैं, हम दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी इस मतदान पर निर्भर करेगा। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। अफ्रीकी देश कैमरून में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक बोर्डिंग स्कूल से 79 बच्चों और स्कूल के 3 स्टाफ सदस्यों को अगवा कर लिया है। अपहरण की घटना सोमवार सुबह बमेंडा शहर में हुई। इसके बाद से वहां बड़े स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। अपहरण की चश्मदीद रही स्कूल की शिक्षिका मौरी नानजाई ने बताया। करीब 5 लोग स्कूल परिसर में आए। वो प्रिंसिपल, ड्राइवर और एक टीचर को ले गए। वो अलग अलग डॉर्मेट्री से बच्चों को भी ले गए, लड़कों और लड़कियों दोनों को। 79 छात्र और 3 स्टाफ, यानी वो कुल 82 लोगों को ले गए हैं। इसके बाद सेना आई और हम प्रिंसिपल के घर में गए। वहाँ का नज़ारा देखकर हमें लगा कि वो दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर घुसे थे। कांच के टुकड़े अब भी ज़मीन पर पड़े हैं। स्कूल की शिक्षिका मौरी नानजाई के शब्द। अधिकारियों ने अपहरण के पीछे अंग्रेजी भाषी अलगाववादी विद्रोहियों का हाथ होने की बात कही है। हालांकि अब तक किसी संगठन ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। अलगाववादी फ्रेंच भाषी राष्ट्रपति पॉल बिया से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रति अपने रवैये में थोड़ी नरमी बरती है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर लगाए कठोर प्रतिबंधों पर थोड़ी ढील देना चाहते हैं, ताकि तेल के दामों में अचानक वृद्धि न हो। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को इन पाबंदियों से रियायत दी जाएगी। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि इन कठोर प्रतिबंधों के बाद ईरान के रवैये में बदलाव आएगा। ईरान पर अमेरिका की लगाई पाबंदियां बीते दिन से लागू हो चुकी हैं और ईरान में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश का पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को इस योजना की आधारशिला भी रख दी। हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये रिएक्टर किस तरह का होगा और इसका मकसद क्या होगा। सऊदी अरब की सरकार अगले 2 दशक में 16 परमाणु रिएक्टर बनाना चाहती है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव इस समय। मेरा नाम है संदीप सोनी। अमेरिका में अब से चंद घंटों में कांग्रेस और सीनेट की कुछ सीटों के लिए मतदान शुरू होने वाला है। इस चुनावी दंगल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सीटों के लिए भारतीय मूल के कई उम्मीदवार मैदान में हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
इस बार अमेरिकी कांग्रेस या प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव में सबसे अधिक 12 भारतीय मूल के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सबसे अहम एरिजोना प्रांत में हिराल तिपिरनेनी कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 8 से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, जो अपनी रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डेबी लेस्को को कड़ी टक्कर दे रही हैं। हिराल तिपिरनेनी एरिजोना जैसे रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ में एक भारतीय मूल के उम्मीदवार की हैसियत से अपने अनुभव कुछ यूं बयान करती हैं। अभी भी एरिजोना में ये बहुत कम ही नजर आता है कि भारतीय मूल के लोग चुनाव में खड़े हों, जैसे अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के शहरों में देखा जाता है, जहां अब काफी भारतीय मूल के लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमें सभी का समर्थन मिल रहा है और हम बहुत ही कांटे के मुकाबले में रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी को टक्कर दे रहे हैं। हिराल तिपिरनेनी के शब्द। पेशे से एक चिकित्सक डॉक्टर हिराल तिपिरनेनी के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं सेहत के क्षेत्र को बेहतर बनाना, शिक्षा क्षेत्र में बेहतरी लाना और इमिग्रेशन कानून में बेहतर सुधार लाना। डॉक्टर हिराल बताती हैं कि उनका पूरा परिवार उनकी चुनावी मुहिम में लगा हुआ है और भारत में रह रहे उनके परिवार वालों से भी उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर हिराल बताती हैं कि वो अक्सर भारत जाती हैं, जहां गुजरात और आंध्र प्रदेश में अपने परिवार वालों के साथ समय भी गुजारती हैं। इसी तरह भारतीय मूल की अनीता मलिक भी एरिजोना के डिस्ट्रिक्ट 6 से कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला है रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा कांग्रेस सदस्य डेविड श्वाइकार्ट से। अनीता मलिक कह रही थी, एरिजोना में वोटरों का एक हिस्सा तो यकीनन राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से बहुत नाराज है और वो उनके खिलाफ वोट देने के लिए आ रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो स्थानीय मुद्दों पर अपना वोट देना चाहते हैं। अनीता मलिक बताती हैं कि उनके माता पिता दिल्ली और पूना में रहे, उसके बाद अमरीका आकर बस गए। अनीता मलिक पिछले साल तक एक टेक्नोलॉजी कंपनी की CEO थी और उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने पिछले साल ही राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय मूल की मौजूदा कांग्रेस सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमिला जयपाल वाशिंगटन प्रांत से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस सदस्य रो खन्ना और एमी बेरा और इलिनॉय प्रांत से राजा कृष्णमूर्ति भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा कृष्णमूर्ति और रिपब्लिकन पार्टी के भारतीय मूल के ही अमरीकी जितेंद्र दिगांकर आमने सामने हैं। कनेक्टिकट से एकमात्र रिपब्लिकन पार्टी के भारतीय मूल के उम्मीदवार हैरी अरोरा डेमोक्रेटिक पार्टी के जिम हाइम्स के खिलाफ मैदान में हैं। जिम हाइम्स पिछले 10 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं।
ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं उनको सहज करो, उनको सुधारो। चाहे आप हेल्थ केयर को देखें, हेल्थ केयर का मुद्दा जो है वो लोग सिर्फ जिसे कहते हैं नैरेटिव में लगे रहते हैं, कि स्पिन देते हैं उस पे। मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
एकमात्र भारतीय मूल के आजाद उम्मीदवार शिवा अय्यादुराई सेनेट की सीट के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के खिलाफ मैदान में हैं, लेकिन उनके जीतने की संभावना ना के बराबर है। अमरीकी कांग्रेस के चुनाव में इन 12 उम्मीदवारों के अलावा भारतीय मूल के 25 से अधिक उम्मीदवार प्रांतीय और स्थानीय चुनावों में भी भाग ले रहे हैं। अब से कुछ घंटों में अमरीका भर में पोलिंग स्टेशन खुल जाएंगे और मतदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की इस चुनाव में अब यही कोशिश है कि वो अपने अपने वोटरों को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए तैयार कर सकें। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
अयोध्या में होने वाले 3 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के तमाम मंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में होंगी। अयोध्या से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट सुने।
पिछले साल 1 दिवसीय दीपावली महोत्सव से उत्साहित राज्य सरकार ने इस बार कार्यक्रम 3 दिन का रखा। पिछले 2 दिन तक शहर में रामलीला समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और आज सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। राम की पैड़ी पर सरयू घाट के दोनों ओर की सीढ़ियों के ऊपर मिट्टी के दिए सजाकर रखे गए हैं और आज शाम जैसे ही उनमें तेल भरकर प्रज्वलित किया जाएगा, पूरा घाट जगमग हो जाएगा। घाटों को वैसे भी पिछले दो दिनों से रोशनी से नहलाने के लिए लेजर बीमों और खूबसूरत प्रकाश का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार के आला अधिकारी पिछले करीब दो हफ्ते से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने बताया,
इस बार की खास चीज ये है कि कोरिया की जो प्रथम महिला है, उनके जो राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी, वो यहाँ मुख्य अतिथि होंगी।
वहीं बड़ी संख्या में वीआईपी आवागमन को देखते हुए सोमवार से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नया घाट के अंदर वाहनों पर पाबंदी कल शाम से ही लगा दी गई, जबकि और जगहों पर भी वाहनों के आवागमन पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है। राज्य के डीजीपी ओपी सिंह कहते हैं,
नेशनल के साथ साथ एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का ये फेस्टिवल है। सुरक्षा के जितने भी हम प्रबंध करेंगे, वो उसको किसी भी तरह से कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो घाटों की सुरक्षा हो, उनके सेफ हाउसेज के बारे में हो, जितने भी हमारे 6-6 इवेंट्स हैं, उन सबों को हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी व्यावसायिक दक्षता दिखाते हुए उन सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, कि हमारे इस लखनऊ जोन में दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। उसी दिन हमारा वन डे मैच भी है लखनऊ में, और उसी दिन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री और साउथ कोरिया की प्रथम लेडी आ रही हैं।
उधर सोमवार देर रात तक अयोध्या की सड़कों पर चहल पहल रही। कुछ लोग सरयू घाट पर रोशनी और दीयों की सजावट देख रहे थे, तो कुछ धनतेरस की खरीदारी में व्यस्त थे। अयोध्या शहर के भीतर मुख्य मार्ग की सड़क पर मरम्मत कार्य भी चल रहा था। कुछ लोगों से बात हुई तो कहने लगे कि पता नहीं दीपोत्सव उन्हें देखने को मिलेगा या फिर ये सिर्फ बाहर से आए मेहमानों के लिए ही होगा।
लोकल आदमी कार्यक्रम ही देखता हूँ, खत्म हो जाए उसके बाद हम देख पाते हैं, दूर से ही कार्यक्रम देख पाते हैं, अंदर नहीं जाने पाते हैं।
अब की बार तो उम्मीद नहीं कि उस कार्यक्रम स्थल तक हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि अब के बाहर के भी गेस्ट हैं, तो प्रशासनिक सुरक्षा घेरा कड़ा रहेगा, क्योंकि उनका भी सुरक्षा दस्ता, बाहर से कोरिया का भी दस्ता आ रहा है, यहाँ का भी दस्ता रहेगा, तो कार्यक्रम स्थल तक उस तरीके मूवमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे जैसे पिछली बार किए हैं।
दक्षिण कोरियाई मेहमान अयोध्या आ चुके हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी आज अयोध्या आएंगी। कल मुख्यमंत्री ने उन्हें रात्रि भोज दिया। बहरहाल अयोध्या के बाहरी हिस्से में आज जहां भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा, तो अयोध्या के लोग हर साल की तरह अपने ढंग से दीपावली मनाने की तैयारी में हैं। कुछ को आशंका है कि भव्य आयोजन वो देख पाएंगे या नहीं, तो कुछ इन सब बातों से बेफिक्र। समीर आत्मज मिश्र, BBC अयोध्या।
ऐसा बहुत कम देखने सुनने में आता है जब किसी चुनाव में परस्पर विरोधी उम्मीदवार किसी एक ही नेता के नाम पर वोट मांग रहे हों। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ऐसा ही हो रहा है, जहां बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला आमने सामने हैं और अपने लिए अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला दे रहे हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लोगों में सुहानुभूति का सहारा है। एक तरफ वाजपेयी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रह चुके रमन सिंह हैं, तो दूसरी तरफ वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला। मुकाबला काफी रोचक है क्योंकि पूरे प्रचार के केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। करुणा शुक्ला ने वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
और पार्टी छोड़ने से पहले मैं अधिकांश नेताओं से मिली थी और अपने चाचा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैंने अनुमति लेकर पार्टी छोड़ी है। मैंने ऐसे पार्टी नहीं छोड़ दी। और इन वरिष्ठों से जो आज अपमानित हो रहे हैं, उनसे भी मैंने बताया था कि जहां मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा ना हो, ऐसे दल में मेरे लिए रहना संभव नहीं है।
करुणा शुक्ला का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की अनदेखी की है।
मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, वो मुख्यमंत्री जी ने बहुत चुनाव हो गए, किसी भी बैनर पोस्टर में अटल जी को स्थान नहीं दिया। देश का भी चुनाव हुआ, राज्य का पिछला चुनाव भी हुआ। राज्योत्सव मनाते हैं प्रतिवर्ष, करीना कपूर और कंगना रानौत जैसी अभिनेत्रियों को बुलाते हैं, पर राज्योत्सव में भी अटल जी का उन्होंने कहीं कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाया, नाम नहीं दिया। और जीवित अटल जी के नाम पर बनाते ना, अटल जी चूंकि अब 5 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का भी चुनाव है, और अटल जी का 16 अगस्त को देहावसान हो गया, तो अटल जी इनके लिए वोट बैंक है।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
पिछले 15 सालों से रमन सिंह राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस बार उनके प्रचार की कमान उनके सांसद पुत्र अभिषेक सिंह ने संभाल रखी है। वो करुणा शुक्ला के आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं,
अटल बिहारी वाजपेयी जी को भुलाने की बात ही पैदा नहीं होती। विकास यात्रा हो या उसको लेकर, पहले हमारा हर साल 1 नवंबर को जो हम राज्य का जन्म दिवस मनाते हैं उसको लेकर हो, या फिर अब उनका स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था तो वो एक अलग विषय है।
नहीं, तस्वीरें उनकी नहीं है पोस्टरों में,
उनकी तस्वीर हमारे हर कार्यकर्ता के दिल में है।
अभिषेक सिंह का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सभी दलों में श्रद्धा का भाव है।
भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिल में परम आदरणीय अटल बिहारी जी के प्रति अपार श्रद्धा है, और उसकी वजह न सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के एक जननेता थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, बल्कि आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उनको लेकर एक श्रद्धा का भाव इसलिए भी है कि इस प्रदेश का जन्म उनके आशीर्वाद से हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाबो, अपन क्षेत्र में विकास के गंगा बहाबो, मतदाता संगी संगवारी हो, दाई बहनी दीदी बड़का सियाना।
तो क्या राजनांदगांव में वाकई करुणा शुक्ला मुख्यमंत्री रमन सिंह को टक्कर दे रही हैं? कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो है कि इस चुनावी समर में कूदने वालों को इस बार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का सहारा ही है, क्योंकि इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी। सलमान रावी, BBC, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद।
दिल्ली से छपने वाले तमाम अखबार स्टूडियो में आ चुके हैं और सिंधुवासिनी भी तैयार हैं बताने के लिए आज के अखबार क्या कह रहे हैं।
जी संदीप, एक खबर जो तकरीबन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही है वो ये है कि देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत ने सोमवार को अपना पहला गश्ती अभियान पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया और धनतेरस का तोहफा बताया, साथ ही इसे उन्होंने सुरक्षा की गारंटी जैसा बताया। INS अरिहंत पानी, आकाश और हवा में मार करने में सक्षम है, इसलिए इसे न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जा रहा है, यानी 3 स्तरों पर परमाणु सुरक्षा। टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट एक है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश की है। अखबार एक सरकारी सूत्र के हवाले से लिखता है कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार और रिजर्व बैंक में मतभेद हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार RBI गवर्नर उर्जित पटेल को इस्तीफा देने पर मजबूर करेगी। नवभारत टाइम्स में खबर है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया गया और अब ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहा जाएगा, और नाम बदलने का ये फैसला भारत और वेस्ट इंडीज़ के मैच से ठीक एक दिन पहले लिया गया। आज वहाँ पे भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच T20 मैच खेला जाने वाला है,
दूसरा T20 मुकाबला।
जी, एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से, बाघिन अवनी के शिकार पर काफ़ी विवाद हो रहा है और बताया जाए कई लोगों का ऐसा कहना है कि उसे क्रूरतापूर्ण तरीके से मारा गया। मेनका गांधी भी इसके खिलाफ बोला है उन्होंने, और महाराष्ट्र सरकार से एक तरीके से आमना सामना हो गया। अब बाघिन का जिन्होंने शिकार किया, पिता पुत्र की वो जोड़ी, उन्होंने कहा है कि उन्हें दोष देना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो बाघिन को जिंदा नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर वो उसे उस मौके पर गोली न मारते तो बाकी जो वन्य कर्मचारी थे उनकी जान को खतरा हो सकता था। हिंदुस्तान टाइम्स में सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद की खबर है। सोमवार को मंदिर के दरवाजे दोबारा खुले थे, लेकिन
और बड़े पैमाने पर पुलिस सुरक्षा के इंतजाम किए गए,
इसके बावजूद कोई महिला वहां जा नहीं पाई। और इस बीच केरल के भाजपा अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो पूरा प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था औरतों को रोकने के लिए मंदिर में घुसने से, वो BJP ने करवाया था। जनसत्ता में एक खबर है कि मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष हिफेई ने सोमवार को अपने पद विधानसभा और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया,
और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं,
और हाँ वो BJP में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एक और खबर जनसत्ता से ही, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो घाटी में बातचीत का माहौल बना रहे हैं, और उन्होंने दावा किया कि पत्थरबाजी और चरमपंथी हमलों में कमी आई है।
सिंधुवासनी बता रही थी दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोजी रोटी की तलाश में घर से दूर गए लोग दीपावली जैसे मौकों पर अपने घर लौटते हैं ताकि परिवार के साथ त्यौहार मना सकें, लेकिन झारखंड के कुछ घरों में इस दीपावली मातम पसरा है क्योंकि अफगानिस्तान गए 7 भारतीय मजदूर बीते 6 महीने से लापता हैं और उनके घर वालों को अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस हाल में हैं, कब घर लौटेंगे, लौटेंगे भी या नहीं। रवि प्रकाश की रिपोर्ट सुने।
जब मैंने मुरिया देवी से बातचीत प्रारंभ की तब वे सहज थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वे दहाड़ मारकर रोने लगी। कल दिवाली है लेकिन मुरिया देवी ने अभी तक अपने घर की सफाई नहीं की है। उनकी 10वीं पास बेटी की पढ़ाई बीच में ही रुक गई है। उन्होंने कई महीनों से अपने पति को नहीं देखा है। उनके पति प्रसादी महतो का इस साल 6 मई को अफगानिस्तान में अपहरण कर लिया गया था। वे झारखंड के घाघरा गाँव में रहती हैं। यह गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड का हिस्सा है। अफगानिस्तान में अगवा 7 मजदूरों में से 3 इसी प्रखंड के रहने वाले हैं, जबकि उनका चौथा साथी पड़ोसी हजारीबाग जिले के टाटीझरिया प्रखंड का निवासी है। मुलिया देवी के बेटे मोहन महतो ने कहा कि उनके पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो परदेश में उनका अपहरण कर लिया गया।
यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग का आदमी चाहिए सही सलामत। कंपनी तो बोल रहे हैं कि बात अभी आगे बढ़ रही है और देखो आगे बढ़ रही है बात, इसी तरह बोल रहे हैं हम लोग।
इसी गाँव की चमेली देवी भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अपहरण से पहले उनके पति प्रकाश महतो हर सुबह उन्हें वीडियो कॉल कर बातचीत करते थे। अपहरण के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बुलावे पर वे दिल्ली भी गई थीं। तब विदेश मंत्री ने कहा था कि उनके पति का पता 1 महीने के अंदर लगा लिया जाएगा। अब उस मुलाकात के 4 महीने बीत चुके हैं। चमेली देवी ने बीबीसी से कहा,
जब से अपहरण हुआ तब से हम लोग का दिखते हैं ना, पूरा घर में दिक्कत है। अपहरण हुआ था 11 बजे, 8 बजे बात हुआ है, 8:15 बजे। वो बोली कि सब ठीक है, हाँ हम लोग सब ठीक है, तो बच्चा को ठीक से रखना, ठीक से रहना, वही वाला बोले को रख रहे हैं, जा रहे हैं ड्यूटी।
घाघरा गांव बगोदर वेस्ट पंचायत का हिस्सा है। इस गांव के कई और लोग विदेशों में नौकरी करते हैं। यहां के मुखिया लक्ष्मण महतो ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह विलम्ब इन मजदूरों का पता लगाकर उनकी घर वापसी कराए।
लेकिन हमको लगता है कि सरकार को एक भी जरा सा इस पे पहलकदमी नहीं हो रही है। इस तरह का रवैया रहेगा, हमारे जो भारत देश के लोग हैं बस एगो कीड़े मकोड़े की तरह चले जाएंगे।
वहीं जर्मुने वेस्ट पंचायत के मुखिया संतोष रजक का मानना है कि भारत की सरकार इन मजदूरों की रिहाई को लेकर उदासीन बनी है क्योंकि ये लोग गरीब हैं।
यही बड़े घराने में होती, बड़े नेता लोग के यहाँ होता, कई जो है IAS अफसर को जो है काबुल भेजा जाता, कई पदाधिकारी को यहाँ से भेजा जाता, लेकिन प्रवासी मजदूर के साथ लगातार शोषण हो रहा है।
अब मैं प्रमिला देवी से मुखातिब हूँ। वे जर्मुने वेस्ट पंचायत के महुरी गाँव में रहती है। उनके पति हुलास महतो ने वादा किया था कि घर आते वक्त वे बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। अब दिवाली है लेकिन मिठाइयों को छोड़िए उनके घर में रोज खाना भी नहीं बन पाता।
खाकर मन करेगा, परिवार अच्छा रहता तो हम लोग नहीं खाना बना के खाते, अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग।
दरअसल घाघरा गांव के प्रकाश महतो और प्रसादी महतो के साथ ही महुरी गांव के हुलास महतो और टाटीझरिया प्रखंड के बेडम गांव के काली महतो भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका के स्वामित्व वाली KEC इंटरनेशनल के लिए अफगानिस्तान में काम करते थे। 6 मई को कथित तालिबान समर्थकों ने उनका अपहरण कर लिया। उसके बाद इनके परिजनों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी मुलाकात की, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चल सका है। रवि प्रकाश, BBC के लिए झारखंड के बगोदर में।
पाकिस्तान में BBC की एक टीम अलग अलग जगहों पर जाकर महिलाओं से बात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो उन महिलाओं के लिए अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान में BBC शी की इस पहल के बारे में हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने क्वेटा में मौजूद BBC संवाददाता शुमैला जाफरी से बात की।
इंडिया में ये सीरीज हो चुकी है इस साल के शुरू में, और अब हमने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जाने का एक सिलसिला शुरू किया है। हमारा जो पहला पड़ाव था वो बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, उसकी राजधानी क्वेटा था। हम क्वेटा की वुमेन यूनिवर्सिटी में गए थे, सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी, यहाँ की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है। हमने उनसे यही पूछा कि आपके इलाके में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि बीबीसी उनको कवर करे, और आपकी ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो आपको लगता है कि नहीं मीडिया सुनाता और उसे सुनानी चाहिए।
पाकिस्तान में आमतौर पर कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के महिलाओं में चर्चाएं होती हैं? आज आपकी जिन महिलाओं से बात हुई उन्होंने कौन कौन से मसले उठाए, कौन कौन सी समस्याएं बताई?
कुछ तो ऐसी थीम्स हैं जो कि मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में ही एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस होता है, डोमेस्टिक अब्यूज होता है, या फिर औरतों को जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। लेकिन आज जब हम बलूचिस्तान में आए तो बलूचिस्तान में आके हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है वो इंतहा से ज्यादा है। एक रजिया थी, वो मूसा खेल एक इलाका है, बहुत ही रिमोट एरिया बलूचिस्तान का। अगेन उन्होंने बताया,
मर्द को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है हमारे इलाके में, लोग दूध वाला चाय पीते और औरतें बेचारी कावा चाय पीती है। इवन कि वहाँ पर लड़के अपने अबू के सामने खुल कर नहीं बैठ सकते, उनको थोड़ा बहुत फेस कवर करना पड़ता है। अगर वहाँ पर हमारे इलाके में किसी लड़की के पास फोन हुआ तो उस लड़की को अच्छा नहीं समझा जाता है, कहते कि ये बेकार है, खराब है।
एक जो थीम थी जो बार बार एक सामने आती रही, जो लड़कियों ने हमें ये फीडबैक दिया कि जो लड़कियों की तालीम है, एजुकेशन है बलूचिस्तान में, अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा बैरियर्स हैं। हमारी जो है वो बात हुई नईमा से, जो कि खुजदार से हैं, खुजदार भी एक ट्राइबल सोसाइटी है।
लड़कियों को वहाँ पे पढ़ने की बिल्कुल अलाउ नहीं होती, वहाँ पे वो सोसाइटी ही नहीं है कि लड़कियाँ पढ़े। और अगर वहाँ पे जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे अगर स्कूल वगैरह है तो वहाँ पे सरदार और वडेरे लोग हैं वहाँ के, वहाँ पे उनका कब्जा हुआ है, उनका मोर्चा लगे हुए हैं, और लड़कियों को बिल्कुल जो है ना शहूर नहीं है वहाँ पे, उनको उनके हक का नहीं पता, उनको गलत और सही का भी नहीं पता।
जी, और अब बीबीसी शी का जो कारवा है वो आगे कहाँ जाने वाला है?
सिंध सूबे का एक शहर है लाड़काना, ये बेनजीर भुट्टो का और या उनके बाप दादा का शहर है। हम जाकर ये देखना चाहते हैं कि एक ऐसा शहर इंटीरियर सिंध का जिसने मुस्लिम वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर दी हैं, वहां पे औरतें जो हैं उनमें कितनी जागरूकता है।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। टक्कर का मुकाबला रहा पहला T20 क्योंकि लक्ष्य सिर्फ 110 रन का था, पर फिर भी मुश्किल रहा भारतीय टीम के लिए। तो क्या एक तरफा मुकाबला देखा जाए आज का? बता रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मदन लाल।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्पोर्ट्स में जब मैचेस होते हैं तो ऐसे जो है टाइम आता है, सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए, वेस्ट इंडीज का जो पहला स्पेल था उन्होंने बहुत ही अच्छा स्पेल किया, जहाँ पे उन्होंने गेंद गिराए हैं वो एक बहुत अच्छे बॉल से, जहाँ पे हमारे जो खिलाड़ी आउट हुए हैं 2-3, पर उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा कंट्रोल किया। दिनेश कार्तिक ने और कुणाल पांड्या ने मिलकर जो थोड़ी साझेदारी हुई है उससे थोड़ा सा हमने वो मैच जीता भी है। पर सिचुएशन ऐसे आते हैं कई बार तो आपको हैंडल करने पड़ते हैं, तभी आपकी टीम जो है ना स्ट्रांग बनती है।
ये थे मदन लाल, बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज को अच्छा अंदाजा है अपनी परफॉर्मेंस का। और अब बात बैडमिंटन की। भारत के शुभंकर डे ने 5वीं वरीयता प्राप्त राजीव सैफ को सीधे गेम में हराकर सॉर्लो लक्स ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। शुभंकर ने इंग्लैंड के ओसेफ को रविवार को खेले गए फाइनल में केवल 34 मिनट में 21-11, 21-14 से पराजित किया। पहली बार ओसेफ के खिलाफ खेल रहे शुभंकर को पहले गेम में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उन्होंने लगातार 7 अंक बनाकर ये गेम अपने नाम किया। और अब जाने से पहले बात टेनिस की। अपनी चोटों से उभरते हुए इस साल अच्छा प्रदर्शन कर सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच एक बार फिर वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। सोमवार को जारी टेनिस पेशेवर संघ ATP की ताजा रैंकिंग में जोकोविच ने स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। ऐसे में नडाल एक स्थान नीचे खिसक कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
BBC समाचार। 2 साल पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमरीकी मतदाता आज एक बार फिर कांग्रेस के नए सदस्यों का चुनाव करने वाले हैं। अफ्रीकी देश कैमरून में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक बोर्डिंग स्कूल से 79 बच्चों और स्कूल के 3 स्टाफ सदस्यों को अगवा कर लिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर लगाए पाबंदियों में थोड़ी ढील देंगे ताकि तेल के दामों में वृद्धि ना हो। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे शाकिर आलम, संदीप सोनी के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन bbchindi.com आपके साथ है।